الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات بھیجیے محمد علی محمد تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے شہداء ملت جعفریہ کے لیے خاص طور پہ دو نام آج اور لے رہا ہوں شہید علامہ حسن ترابی صاحب اور شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر اس سے بہتر انداز میں بابا بلند آواز سے صلوات دیجیے ولا تلبسوا الحق بالباطل باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ کیا حق کو باطل کا لبادا نہ پہناؤ حق کو باطل باطل کو حق بنا کر پیش نہ کرو اور جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے پھر بھی حق کو چھپاتے ہو ودک تم الحق کا وان تم تعلمون جانتے ہو پھر بھی حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے جب جھوٹ دیواروں میں نظر آنے لگے جب جھوٹ بینروں میں نظر آنے لگے جب جھوٹ پہنا فلیکس پہ نظر آنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ ودک تم الحق کا وان تم تعلمون جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں معلوم ہے حق کیا ہے اس لیے تو چھپا رہے ہیں یہی باطل کی پہچان ہے حق کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی حق کو کبھی بھی طول تاریخ میں جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی جہاں جھوٹ کا سہارا لیتا ہوا نظر آ جائے آیات کا غلط مفہوم نکال کے لے کر آ جائے احادیث کا غلط مفہوم اپنی جگہ احادیث گڑھ کر لے آئے وز کر لے احادیث نہیں آتے نا ادھر کی حدیث ادھر ادھر کی حدیث ادھر اس کا نام ادھر اس کا نام ادھر تو بس بتا رہی ہے یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ اگر حق ہوتا تو اسے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہ ہوتی حق کو کبھی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ حق کو کوئی جلدی نہیں ہے اس بات کی کہ کوئی مانے یا نہ مانے حق کی فطرت میں جلد بازی ہوتی ہی نہیں جلد بازی وہاں ہوتی ہے جہاں معاملات ہاتھ سے نکلتے نظر آ جائیں جلد بازی کہاں ہوگی جہاں اقتدار جاتا ہوا نظر آئے معاملات ہاتھ سے نکلتے نظر آئے کو دکھوں دودھ زندگی کو سب کچھ تو دنیا کو سمجھتے ہیں لہذا جلد بازی وہاں ہوگی تو جہاں جلد بازی ہے وہاں جھوٹ بھی شامل ہوگا حکومت ہاتھ سے نہ نکل جائے ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے وہ بنی امیہ کی ہو یا بنی عباس کی ہو آج کی حکومت ہو تو کیوں جھوٹ کا ضرورت پڑتی ہے جھوٹ بولنے کی کیونکہ جلد بازی ہے نا حق کو کوئی جلدی نہیں جناب آدم سے لے کے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آپ کے پردہ فرمانے سے لے کر آج تک اور آخری زمانے تک قیامت تک حق کو کبھی کوئی جلدی حق تو اللہ کے وعدے پر قائم ہے نا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر حال میں حق کو فتح ہوگی جا الحق وزحق الباطل ہر زمانے کے لیے ہے یہ آیت نہ سمجھے گا کہ ابھی آیت کی تطبیق نہیں ہوئی آیت کی تطبیق اس وقت ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا نہیں ہر زمانے کے لیے ہے یہ آیت کہ جا الحق وزحق الباطل جہاں جہاں بھی حق آ جائے گا باطل دفع ہو جائے گا باطل فرار ہو جائے گا बातिल की किस्मत में ही फरार लिखा है। बद्र से लेके करबला तक, करबला से लेकर आज तक, आज कहां जहां भी चले जाइए हक को बातिल का मारकर है। बिल आखिर बातिल को भागना पड़ता है, क्योंकि हक को कोई जल्दी नहीं। हक कायम है, दाइम है, खड़ा है, मैदान में है, मैदान में खड़ा है। हर जमाने में हक को शिकस्त हुई, हो रही है, होगी। बातिल को शिकस्त हुई, हो रही है, होगी। और हक किसी भी जमाने में शिकस्त पजीर नहीं था, कभी शिकस्त नहीं, कभी सोची, कभी नहीं। आज इसी पे बात होगी कि लोग समझे कि शिकस्त होगी। कल एक बड़ा अहम मफहूम रह गया था जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया था, लेकिन वो वक्त हाथ से निकल गया था। आज बयान करेंगे कि हक कभी भी शिकस्त खोर्दा नहीं होता। मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, जला दिया जाए, लूट लिया जाए, दरबदर कर दिया जाए, हिजरतों पे मजबूर कर दिया जाए, कल इशारा किया था ना, हक को कभी शिकस्त नहीं होती। लेकिन हक का साथ कौन देता है, हक के साथ कौन खड़ा होता है? दो मेयार बताए थे कल आपकी खिदमत में, एक अकले सलीम, एक नकले सही। अकले सलीम पर जहां तक हो सकता था एक मजलिस में कल बात की, अब आइए नकले सही, यानी किसी के कौल को सही नकल करना। गलत नहीं, किसी ने कोई बात कही है उसको सही नकल करना, यह लफ्जी माना है नकले सही का। किसी की कोई तकरीर सुनी, कोई बात पसंद आई, कहीं जाके नकल कर दी, यह है नकले सही। और नकल गलत क्या है कि कहा कुछ, नकल कुछ और किया, कहा किसी और के लिए, लगा दिया किसी और के साथ, आयत आई किसी और के लिए, चिपका दी किसी और के साथ। सही है ना भाई, हुआ ना पूरे तारीख में ऐसा हुआ ना भाई, हजारों तफसीरें जो आज तक लिखी जाती रही तो क्यों लिखी जा रही है, कुछ ना कुछ तो फर्क है ना, जब भी तो लिखी जा रही है। आयात अपनी जगह, कुरान की सूरतें अपनी जगह, मगर हर तफसीर एक दूसरे से मुख्तलिफ तो है ना, और कहीं कहीं तो मतालिब ही बिल्कुल अलग है। तफसीर में जो मतलब बयान किए गए सब बिल्कुल अलग, मैं कुछ कह रहा हूँ, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, हम कह रहे हैं इसकी शान में, वो कह रहा है उसकी शान में, वो कह रहा है उसकी शान में। अब लोगों के पास तो कोई मयार है नहीं, जो मौलवी ने बता दिया मान लिया, लोगों के पास मयार तो है नहीं। तो भाई आलिम है, सच बोल रहा होगा। अरे भाई देख लो आलिम किस हालत में बात कर रहा है, हालत भी सही है कि नहीं है इसकी, इसके कौल पे कैसे एतबार कर लिया जाए। जिस हालत में ये गुफ्तगू कर रहा है, जिस कैफियत में गुफ्तगू कर रहा है, जिस पस मंजर के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है, जिस माइंड सेट के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है, जिस माइंड सेट के साथ ये गुफ्तगू कर रहा है, आया इसकी बात काबिले एतबार भी है या नहीं है? तो है ना, तो नकल तो कर रहा है, नकल आया सही कर रहा है, मगर तत्वी गलत कर रहा है, मगर मानी में अपनी मर्जी की तब्दीलियां ला रहा है, मफाहिम अपनी मर्जी के ला रहा है, तफसीर अपनी मर्जी की ला रहा है, यानी बस कौल सही है मगर तत्वीक गलत कर रहा है। नकल सही क्या कहलाएगा कि नहीं, नकल सही का तफासीर में और उलूम दीनिया में नकल सही का मतलब यह है कि सही तरीके से लिया जाए, सही जगह से लिया जाए, सही फर्द से लिया जाए, यह है नकल सही। अकल सलीम और नकल सही, कुरान की आयत नकल कर दी, मैंने भी पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दूसरे ने भी पढ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैंने भी कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए नहीं पुकारना, दूसरे ने भी ये कहा और इसी पर अड़ गए सब, इसी पर अड़ गए। देखो कुरान मजीद में है कि नहीं है, खबरदार अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारना। तो खुदा के बंदो, अगर परवरदिगार आलम मलाइका को मुकर्रर कर रहा है, देखिए अब आपको बता रहे हैं, बाद में लाएंगे वो आयत जो हक पर दलील इसके लिए बनेगी। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वह हुवा युहयी व युमीत, वही है जो जिंदा भी कर रहा है, वही है जो मारता भी है, ऐसे ही है ना, और एक जगह नहीं कई मकामात पे, तो वही जिंदा भी करता है, वही मारता भी है। अच्छा हम कहते हैं कि नहीं, मौत का फरिश्ता आता है, قرآن مجید نے یہ بھی تو کہا کہ موت پر بھی ملائکہ مقرر ہیں. جناب اسرائیل, حضرت اسرائیل کا کیا کام ہے؟ ملک الموت کس کا لقب ہے؟ تو وہ یہ مارنا کس کا کام ہے؟ مار تو اسرائیل رہے, پروردگار کہہ رہے کہ میں نے مارا ہے. بڑی آسانی سے ایک مطلب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو, تمام بھائیوں کو جہاں جہاں ہیں. موت پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ ملک الموت, جناب اسرائیل علیہ السلام. ایسے ہی ہے نا, مار وہ رہے ہیں مگر پروردگار کہہ رہے نہیں میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں. تو وہاں تو فرشتے مقرر کیے ہیں, مالک بتا رہا ہے پروردگار کہ جو کام میں نے سونپا ہے وہ کوئی بھی انجام دے گا, میری طرف ہی پلٹ کر آئے گا. بارش میں برساتا ہوں, پانی میں دیتا ہوں, بادل میں اڑاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا سارے کام. قرآن مجید میں پروردگار فرما رہا ہے میں نے انجام دیے, لیکن معبود یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ ایک جگہ ہے کہ یہ ملائکہ بادل کو اڑاتے ہیں, یہ ملائکہ لے کر جاتے ہیں. یہ جناب میکائیل ہیں جو بارش برساتے ہیں. تو جناب میکائیل کے فعل کو پروردگار اس لیے اپنی طرف پلٹا رہا ہے کہ ان کاموں کے لیے میں نے مقرر کیا ہے, لہذا جو جو یہ کام انجام دے رہا ہے در حقیقت میں انجام دے رہا ہوں, میری طرف پلٹے گا. ارے دنیا میں بھی اصول ہے کہ نہیں؟ بد امنی ہو تو ذمہ دار کون, چوری ہو تو ذمہ دار کون, قتل ہو تو ذمہ دار کون, ڈاکہ زنی ہو تو ذمہ دار کون, بھوک اور افلاس پھیلے تو ذمہ دار کون, خوشحالی پہلے تو کس کی تعریف, چیزیں خدا نہ کرے سستی ہو جائیں تو کس کی تعریف. ڈر لگتا ہے ایسے الفاظ بھی منہ سے نکالتے تھے, کس کی تعریف؟ تو بھائی وہی کچھ تو ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کر کوئی رہا کام لیکن جو ذمہ دار ہے سب اس کی طرف پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا؟ بس عالمین کا جو رب ہے, جو ذمہ داریاں دے رہا ہے انبیاء کو, اوصیاء کو, ملائکہ کو, اسی لیے تو دے رہا ہے. دھوکہ مت کھانا, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو جس کو میں نے مدد کرنے کا حق دیا ہے وہ جب بھی جہاں بھی مدد کرے گا اللہ کی مدد کہلائے گی. نہیں ابھی تو دعویٰ ہوا ہے, ابھی تو دعویٰ ہوا ہے, ابھی دلیل کہاں آئی؟ دلیل تو اب دیں گے اپنے تمام بھائیوں کے لیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کم از کم پورے پاکستان میں تو دیکھا جا رہا ہے ہماری گفتگو سنی جا رہی, تو بغیر دلیل کے کیسے جائیں گے؟ کل کوئی کھڑا ہو جائے کہ وہی بات آپ نے بھی کر دی کہ اپنی مرضی کا مطلب لے کے اڑ گئے. نہیں, اپنی مرضی کا مطلب لے کے نہیں اڑے. اب دلیل لیجیے کہاں کہاں مدد کسی اور نے کی, پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے کی ہے. وہ آیات جو آپ سنتے رہے ان کی طرف نہیں جا رہا, اس طرف آ جائیے. جناب موسیٰ کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے. فرعون نے سرکشی کی, جائیے اس کی طرف, اس کی ہدایت کیجئے, نرمی سے بات کیجئے گا. کس نے حکم دیا؟ پروردگار نے. ذمہ داری کون دے رہا ہے؟ پروردگار ہے عالمین. رسول کون بنا رہا ہے؟ اللہ کی ذات. اور جناب موسیٰ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ دعا کی ہے, سب کو یاد ہے. علماء تو بہت شوق سے, ذوق و شوق سے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں, جس نے رسول بنایا, جس نے صاحب کتاب بنایا, وہ کہہ رہا ہے کہ جائیے فرعون سے مقابلہ کیجئے, اس کی ہدایت کیجئے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وجد لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرک ہو فی امری. وزیر بنا دے, میرے گھر سے ہو, میرا بھائی ہو, ہارون ہو, اور اس کے ذریعے سے میری پشت کو مضبوط کر دے. کیوں؟ اللہ مضبوط کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ پشت, یہ سورہ طہٰ کی آیات ہے, یاد رکھیے, صبح شام آپ کے کام آئیں گی. صبح شام 19वीं आयत से लेके 39वीं तक चले जाइए, सुबह शाम स्कूल में काम आएंगी, दफ्तर में काम आएंगी, कॉलेज में। ये वो दलील है कुरान की, बल्कि दलील नहीं, ये बुरहान है जो मुखालिफ की दलीलों को काट देती है। यह आयत इलाही है, इसलिए तो इरशाद व फअम्मल लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहु अलहक्कु मिन रब्बिहिम। बस वो लोग जो मोमिन है, जो ईमान लाए, वो जानते हैं कि ये कुरान हक है। अन्नहु अलहक्कु मिन रब्बिहिम, ये सब हक है जो रब की तरफ से नाजिल हुआ है। याद रखेगा यह आयत, किससे मांग रहे? अल्लाह से। क्या मांग रहे? मददगार दे दे। क्यों भाई? डायरेक्ट अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे कि मेरी पुश्त को मजबूत कर दे? नहीं, मेरे भाई को मेरा पुश्तीबान बना दे, मेरा मददगार बना दे। और सिर्फ ये नहीं, वाशरिक हो फी अमरी, ये इतना बड़ा मार्ग का जो दरपेश है, इसमें मेरा शरीक भी बना दे। वाशरिक हो फी अमरी। अब कोई मुझे बता दे कि ये दुआएं पूरी हुई या नहीं? पूरी हुई ना। हालांकि होना क्या चाहिए था कि आप मदद मुझसे मांगिए, भाई से किस लिए मांग रहे? भाई बड़ा मदद करने वाला है या मैं बड़ा मदद करने वाला हूं? बस मालूम हुआ कि मूसा जानते थे कि अल्लाह की मदद का भी एक तरीका है। किस तरीके से मदद? सुलेमान खुद भी तो तख्त ला सकते थे, या आसिफ बरखिया को कोई इजाजत दी के ये काम करो? समझ में आ रही है बात? ये सब पढ़ चुके, लेकिन बस यहां तक इसलिए लाना था कि बात समझ में आ जाए कि हक कैसे। आधा लेके मत उड़ो कि अपने मतलब की बात ले ली उड़ गए। नहीं, जहां जहां जिसने मदद की, किसी हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया। माजल्ला जिस्मो जिस्मानियात है, अल्लाह नहीं है ना, यदुल्ला कहा। यह सुनते रहते हैं ये मथाली बात, किसी की आगोश को अपनी आगोश करार दिया, किसी की पनाहगाह को अपनी पनाहगाह करार दिया। सब है कि नहीं है? क्यों? ये दलील कायम हो रही है कुरान में कि नहीं, इस दीन के रास्ते में जिस जिसको हमने मदद के लिए करार दिया, वो जब जब जहां जहां मदद करेगा, वही मदद अल्लाह की मदद होगी। क्यों कहा नहनु अंसारुल्लाह? अल्लाह की मदद कोई कर सकता है? कल हमने एक आयत पेश की थी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो। कौन है ऐसा जो अल्लाह की मदद करेगा? जब जनाब ईसा ने सवाल किया कौन है अल्लाह की राह में साथ देने वाला, तो हवारियों ने क्या कहा? कालल हवारियों नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार। अब बताइए कहां ले जाएंगे आयत को आप? बस मालूम हुआ कि जनाब ईसा भी ये देखना चाह रहे थे कि दीन के रास्ते में कौन कौन है जो मेरी मदद करेगा। जो भी मेरी मदद करेगा, यानी वो अल्लाह के दीन की मदद कर रहा है। दूसरे माना में यूं कहूं कि अल्लाह ने अपनी मदद को जनाब ईसा के लिए हवारियों की सूरत में भेजा था कि मेरी मदद आप तक आएगी इन हवारियों की सूरत में। लिहाजा ये सुन्नत इलाही है कि मेरी मदद का मतलब क्या है? जिस तरीके से मैं मदद भेज रहा हूं, वो वसीला मेरा ही है, मेरा ही भेजा हुआ है, मैं मदद कर रहा हूं। लिहाजा अब बात मालूम हो गई कि आधा लेके नहीं उड़ना, मतलब को पूरे कुरान की रोशनी में देखना है, पूरे कुरान की आयात में देखना है कि नुसरत का क्या क्या माना बताया गया। तो हक क्या होगा जब पूरा का पूरा कबूल किया जाए? अपने मतलब का लेके मत उड़ जाओ। एक चीज लेके उड़ कर कहा यह हक है, नहीं ऐसा नहीं है। नकल सही, सही बात करो। हक अगर पहचानना है तो जितनी भी हक की आयात है पहले सब लाओ और देखो कि क्या है हक, कहां कहां हक कहा गया। कुरान हक, नबी हक, मलाइका हक, अल्लाह की मदद हक, अल्लाह की मदद करना भी हक, अल्लाह से मदद लेना भी हक। इंतंसुरुल्लाह बार बार इसलिए तकरा रहा हूं कि जिसने पहली मस्जिद से नहीं सुनी वो धोखा ना खा जाए कि अल्लाह की मदद करने का मतलब क्या है? अल्लाह के दीन की नुसरत। तो बस जिन जिन इबादुल्लाह ने मदद की अल्लाह के दीन की, उनकी मदद को अल्लाह ने अपनी मदद करार दिया। उनकी फतह को अल्लाह ने अपनी तरफ पलटा दिया। किस किस मकाम पर, अब बताने जा रहा हूं आपको कि हक कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, काट दिया जाए। हक हक है। हक क्या है? हक है हमेशा गालिब रहेगा, जा अल हक व जहक अल बातिल। हमेशा हर दौर में यही उसूल है। ना समझना वक्ती तौर पे काट दिए जाओ, मार दिए जाओ, जिला वतन कर दिए जाओ, कोई घबराने की बात नहीं। हक हक है। कैसे? देखिए, कल जो मतलब बयान करना चाह रहे थे वक्त नहीं मिल सका था, आज मिला। पहले मुकदमा बनाते हैं और ज़हनी तौर पे आमादा रहिए, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया था कि मतलब ज़रूर बयान करें। तमाम अंबिया हक हैं, उनकी कुर्बानी हक है। ना होते हक तो उन पर ईमान रखने का हुक्म दिया जाता, वाजिब है। अंबिया पर ईमान लाना वाजिब, उन पर ये चाहे नाम याद हो या नहीं। किसे याद है 1,24,000 के? किसको याद होंगे? 50-60 से ज़्यादा तो नहीं याद होंगे। वो भी ढूंढेगा, जब 50-60 भी ढूंढेगा निकालेगा कैसे, तो लंबिया से जब बनेंगे किसे याद है। मगर ईमान रखना वाजिब है, ऐसे ही है ना। आप ज्यारत पढ़ते हैं, ज्यारत वारिसा, और ज्यारत वारिसा में एक मकाम पर कहते हैं आकर, अस्सलामु अलैकुम या सार अल्लाह वबना सारे। ये मतलब है। अगर किस लोगों ने मुझसे कहीं और सुना है तो मेरी माजरत पहले कबूल कर लीजिए, क्योंकि मुझे ख़ास तौर पर ये कल हुक्म दिया गया था कि ये मतलब मोमिनीन तक ज़रूर पहुँचा दें। मैंने कहा पहुँचा देता हूँ। अस्सलाम अलैकुम या सार अल्लाह वबना सारे, ए खून खुदा और खून खुदा के बेटे। शायद आपने कभी तर्जुमा नहीं पढ़ा हो, गौर ना क्यों, अब मैं बता रहा हूँ तर्जुमा क्या है। खून खुदा और खून खुदा के बेटे, तुझ पर हमारा सलाम। ज़ियारत वारिसा में कितने कमालात और मौजूदे छुपे में, कभी गौर कीजिएगा। एक एक कलमे में, एक एक जुमले में क्या कुछ छुपा हुआ है आपके लिए। हदीस है इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि अल्लाह अपना इंतकाम नेक बंदों के जरिए से लेता है और अपने नेक बंदों का इंतकाम जालिमों पर उससे बड़ा जालिम मुसलत करके देता है। अल्लाह के नेक बंदों को अगर कोई अजियत दे तो उनसे बड़ा जालिम उन पर मुसलत कर दिया जाएगा। रिवायत के अल्फाज तो और भी सख्त हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपके खिदमत में बात को पेश कर दिया। लेकिन अपना इंतकाम जब लेना होता है तो पाक तरीन बंदों से लेता है अपना इंतकाम जब लेना। मसलन फिरौन को तबाह करना हुआ, जनाब मूसा को मुसल्लत किया, नेक तरीन बंदा। नमरूद को तबाह करना हुआ, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इंतकाम। लेकिन जब अपने पाक तरीन बंदों का इंतकाम लिया तो जो जालिम थे, जिन्होंने अजियतें दी थी पाक अल्लाह के पाक बंदों को, तो उनसे भी बदतर और पस्त उन पर मुसल्लत किया गया। मिसाल देता हूं तारीख में, जनाब याहिया अलैहिस्सलाम, जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के साहबजादे, इनका बड़ा जिक्र किया है। जनाब सैयदुश शुहदा ने रास्ते भर याद करते रहे करबला तक, शब आशूर तक जनाब याहिया का बार बार जिक्र करते थे, बार बार जिक्र करते थे। ये पहला सर है, याद रखिएगा, जो कलम होने के बाद जिसने कलाम किया था, जनाब याहिया का सर, सुन लीजिए, वो पहला सर है कि जो तन से जुदा होने के बाद गोया हुआ था, कलाम किया था। क्या है जनाब याहिया का पस मंजर शहादत का और उसके बाद क्या हुआ बनी इसराइल के साथ, जल्दी जल्दी सुन लीजिए हमसे। फअन्नहुल हक्कु मिन रब्बिही, अन्नहु हक्कु मिन रब्बिही, ये वो हक है जो रब की तरफ से आया है। जनाब याहिया, ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं है हक पर चलना, साबित कदम रहना। लोग जानते हैं कि नबी है, रसूल है, पैगंबर है, एहतराम करते हैं, कहना नहीं मानते, अमल नहीं करते। याद रखिएगा, जैसे वो आलिम जो जब तक अम्र बिल मारूफ ना करे, नहीं अनिल मुनकर ना करे, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मुकद्दस है भाई, अपने काम से काम रखता है, नमाज पढ़ाता है, घर चला जाता है, जान छुट्टी। और जहां उसने टोकना शुरू किया, الحق ثقیل، بڑا سخت ہے، بڑا ثقیل ہے، پھر اس کو بھاری پڑ جاتا ہے۔ لہذا اس زمانے میں یہی تھا کہ لوگ احترام اور تقدس اپنی جگہ احترام کرتے تھے کہ اللہ والا ہے، نیک انسان ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتا رہتا ہے، مگر عمل و عمل نہیں کرتے تھے، کہنا وہنا نہیں مانتے تھے جناب یحییٰ کا۔ مگر احترام ظاہری تھا، احترام ظاہری تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ جب تک آپ کی گفتگو مفادات سے نہیں ٹکرا رہی آپ بہت اچھے، جب تک آپ کی گفتگو مفادات سے نہیں ٹکرا رہی بہت اچھے، جہاں مفادات سے ٹکرائی پھر بڑا مسئلہ ہو گیا، پھر آپ بڑے خراب ہو گئے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی ہاں میں ہاں نہیں کر سکتے، تو خاموش تو بیٹھو، بولنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کبھی، اگر ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے تو خاموش ہی ہو جاؤ، یہ بڑی مشکل ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جناب یحییٰ کو پڑھا ہے، جناب زکریا کو پڑھا ہے، انبیاء کو پڑھا ہے، ائمہ طاہرین کو پڑھا ہے، کربلا کو پڑھا ہے، نہ پڑھا ہوتا تو چلو بھائی دوسروں کی طرح سے ہو جاتے، لیکن جب پڑھا ہے تو پھر عمل تو کرنا پڑے گا بھیا، تو کیا کیا جائے۔ جناب یحییٰ کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، یہ واقعہ سن لیجیے، یہ واقعات عام مجالس میں سنائے نہیں جاتے عموماً، مر گئی بیوی، تو اس نے اپنی بیوی کے چھوٹی بہن سے عقد کر لیا، کوئی بات نہیں، شریعت الہی میں کوئی فعل حرام نہیں کیا۔ وہ جو شادیوں کی بیوی آئی، اس کے بڑے خواب و خیال تھے کہ کس طرح سے اس پوری حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ دست بستہ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بہت احتیاط سے جلدی سے گفتگو کرتا ہوا چلا جاتا ہوں کہ اس کی ایک بچی تھی جوان، اس نے چاہا کہ اس کے ذریعے سے، بادشاہ تو عیاش ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو قابو کیا جائے۔ وہ کہا کہ یہ میری بچی سے عقد کر لے۔ ماشاءاللہ تھا تو عیاش، مگر کہا کہ بھائی کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میری زوجہ ہے، تو میری بیوی ہے، اور یہ تیری بیٹی۔ کہا کہ تیری بیٹی تو نہیں ہے نا، تیری بیٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ تو گناہ ہے، یہ تو حرام ہے۔ کہا یحییٰ سے پوچھوں گا۔ جب بہت اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، یحییٰ سے پوچھوں گا، اتنا معلوم تھا کہ یحییٰ فقیہ ہے بھائی، یحییٰ صحیح بات بتائیں گے۔ جناب یحییٰ کو طلب کیا، دل میں تو کچھ اور کھچڑی پک رہی تھی، مگر پھر بھی ظاہری طور پہ پوچھا جناب یحییٰ سے کہ ایسا ارادہ کا، خبردار نہ کرنا یہ کام، تو بھی تباہ ہو جائے گا، سلطنت بھی تباہ ہو جائے گی، یہ قوم بھی تباہ ہو جائے گی، نہیں کرنا۔ ڈر گیا، نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، عقد میں نہیں لوں گا۔ اب وہ حسد کا شکار ہو گئی، بادشاہ کی بیوی تھی، جناب یحییٰ کی دشمن بن گئی، اتنی سی بات پہ حق بولنے، یہ کوئی عجیب بات تو نہیں، مولا کائنات کے قتل کے لیے قطامہ نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو پیش کیا تھا یا نہیں پیش کیا تھا قاتل کے لیے، کہ میں تیری ہو جاؤں گی، لیکن مہر ہے علی کا سر۔ یہ اس لیے مولا بار بار فرماتے ہیں، کتنا پست ہے یہ زمانہ، کتنی پست ہے یہ دنیا، کہ بے نام و نسب لوگ اللہ کے نمائندوں کے قتل پہ تیار ہو جاتے ہیں، بے نام و نسب لوگ، اس میں سب چھپا ہوا ہے جو مولا نے کہا۔ اور یہی جناب سید الشہداء نے کربلا میں فرمایا تھا، یاد رکھنا کہ کیسے پست لوگ میرے مقابلے پر آ گئے جن کا کوئی نام و نسب نہیں ہے، بھائی اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ مولا نے فرمایا کہ یہ ہے زمانہ، یہ ہے زمانہ کہ بے نام و نسب لوگ میرے مقابلے پر آ گئے، حسین کے مقابلے پر، رسول کے بیٹے کے مقابلے پہ، یہ ہے پستی زمانے کی جو بتائی ہے مولا کائنات نے۔ اس لیے جب یہ بے حسب نسب لوگ تمہارے مقابلے پر آ جائیں، تو سمجھ لو کہ تم حق پر ہو، تمہارے مقابلے پہ کوئی نیک نام لوگ تو نہیں آئے نا، اگر کوئی نیک نام لوگ آتے تو پھر آپ شک کرتے اپنے بارے میں، لیکن جب معلوم ہے کہ مقابلے پر آنے والے بے نام و نسب ہیں، مقابلے پر آنے والے وحشی ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے، جانوروں سے بدتر ہیں، اسفلا سافلین ہیں، لہذا اطمینان رکھو کہ تم حق پر ہو، اطمینان رکھو کہ تم حق پر ہو۔ اب دشمنی جناب یحییٰ سے، खूब नशे में खूब शराब पिलाती है बादशाह को, इसलिए हराम करार दिया गया कि महरम ना महरम की तमीज खो बैठता है इंसान इस नशे में। और जब वो नशे में बिल्कुल बेहोश हो गया, मदहोश हो चुका था, फिर उसको सजा बना के सामने लाए अर्थ के लिए। वो इंसान नशे में होता है तो बिल्कुल, और फिर जब इंसान पर हवस सवार हो जाए तो कुछ उसकी समझ में नहीं आता। बड़ा कहा कि इसको समझा दिया था बेटी को, उसने कहा नहीं मेरा मेहर है, कहा जो मेहर है अपनी सल्तनत दे दूंगा तुझे हासिल करने के लिए, कहा नहीं मेरा मेहर है याह्या का सर। समझे क्यों याद कर रहे थे जनाब सिद्दीक शुहदा, मौलाए कायनात के लिए। यही ये कत्तामा जो थी इस मलूना ने यही शर्त रखी थी कि मैं तेरी हूँ लेकिन मेरा मेहर है अली का कत्ल, अली का कत्ल चाहता हूँ। ये पस्त है, ये दुनिया की पस्ती है। तो जनाब याह्या कहते याह्या कसर कहता ये नहीं, इसके अलावा कुछ भी मांग ले, ये अल्लाह का नेक बंदा है, मुसीबत हो जाएगी का नहीं फिर मैं तेरी नहीं, मेरा मेहर यही है। हवस सवार थी, भेजा जल्लादों को बुला के लाओ, याह्या को पकड़ के लाओ। जनाब याह्या को लाया गया, फिर पूछा फतवा, मेरी हिमायत में दो वरना गोली है, वरना क्या है गोली है, वरना बम है और वरना पता नहीं क्या क्या है। फतवा हिमायत में आया तो ठीक है, फतवा मुखालिफत में आया तो, अरे बाबा सारे दीन फरोश थोड़ी बैठे हुए हैं, फतवों की दुकानें कहीं और हैं, उनसे जाके फतवे खरीदो, हर कोई फतवे बेचने वाला नहीं है। जो बेचने के आदि हैं, जिन्होंने करबला में भी फतवे बेचे थे, इमाम हुसैन के खिलाफ फतवे दिए थे ना दीनारों दिरहम के अवज 700, आज भी कुछ लोग फतवों का पलंदा लेकर घूमते कि हम थोड़ी गए थे, 600 मुफ्तियों ने फतवा दिया, वो तुमसे भी बदतर है मुफ्ते, हम नहीं कहते, हम नहीं कहते काफिर वाफिर, वो 600 फलाना मुफ्ता फलाना मुफ्ता फलाना मुफ्ता फलाना, ये फतवों की दुकानों को हम जानते हैं जनाबे याह्या के जमाने से आज तक लगी हुई है। वो बैठा था, एक भाग गया था टेलीफोन लाइन छोड़ के हमारे साथ, ये बकवास किया जा रहा था, हम थोड़ी कहते या तो इतने मौलवियों ने इतने उलमा ने फतवा दिया, वही उलमा थे जिन्होंने कत्ले हुसैन का फतवा दिया था। मैं 700 मुफ्तियों को नहीं जानता, मैं तो कूफे में यह ढूंढ रहा हूं कि वो एक कौन है जिसका नाम है हबीब इब्ने मजाहिर। तुम्हें नजर नहीं आता वो फकीह, मुझे नजर आ गया वो फकीह। तो खैर जनाब, जनाब याह्या ने कहा देख ये काम ना करना, कहा हुक्म दिया कत्ल कर दो, कहा कत्ल कर दे मगर ये काम ना करना, तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाओगे, पूरी कौम तबाह हो जाएगी। कत्ल कर दिया, कष्ट में सर रखा था उस पर रख के जल्लाद ने तलवार चलाई, सर जुदा हो गया। जुदा होने के बाद गोया हुआ, लब हिले जनाब याह्या के, फरमाते हैं अल्लाह के नबी देख तूने मुझे कत्ल कर दिया मगर फिर तुझे नसीहत कर रहा हूं कि ये फेल ना करना। खैर जो वाकया बताना चाह रहा हूं हुआ क्या, चंद कतरे जमीन पर खून के गिर गए, जिस जगह वो कतरे गिरे जमीन ने जोश मारना शुरू कर दिया। जब जमीन ने जोश मारना शुरू किया, मट्टी डाली गई मट्टी में से निकल आया, और डाली गई और उसमें से निकल आया, ढेर लग गया, जितना ढेर बनाते जाते थे खून जोश मारता था। जानते हैं कब तक ये खून जोश मारता रहा, 470 साल, 400 मर गया वो बादशाह, वो लोग भी मर गए तबाह हो गए। अल्लाह ने इन पर मुसल्लत किया बख्त नसर को, सफाक तरीन हाकिम जमाने का, वक्त नहीं उसकी तफसील में जाने का कि उसकी सिफात आपको बताता, बदतरीन पस्तरीन पलीद तरीन इंसान को बनी इसराइल पे मुसल्लत कर दिया, बैतुल मुकद्दस पे हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, 70,000 यहूदियों का कत्लेआम किया, छोड़ा नहीं, बैतुल मुकद्दस में खून की नदी बहा दी। और खून बहाते बहाते जब इस मकाम पर पहुंचा जिसके गिर्द दीवार खींच दी गई थी, पूछा ये क्या मकाम है, कहा ये यहया का खून है जो जोश मारता है। कहा मैं नहीं मानता, लाओ इस पर रेत डालो, पत्थर डालो। डाल दिए गए, फिर निकल आया, था तो पागल उस जमाने का चंगेज था। कहता है कि आखिर क्या है, इसका राज क्या है। कहा लोग कहते हैं कि ये उस वक्त तक खून मारता रहेगा जब तक यहया का इंतकाम पूरा ना हो जाए, जब तक यहया का, एक भी यहूदी बाकी है इस बैतुल मुकद्दस में बाहर नहीं, जब तक एक भी बाकी है ये खून जोश मारता रहेगा। ढूंढो, चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है मगर खून नहीं रुकता, जोश मार रहा है। जंगलों में, पहाड़ों में ढूंढो, एक बुढ़ा पत्थरों के पीछे छुपा हुआ निकल आया, निकालो इसको, कत्ल किया। फिर भी एक यहूदी बुढ़िया दरख्त की खो में छुपी हुई, निकालो, उसको भी कत्ल किया गया। रुक गया खून, खून रुक गया, यानी इंतकाम पूरा हो गया। आप मुझे एक बार बताइए कि मारने वाले ये लोग तो नहीं थे जनाब याहया को, जिन्हें कत्ल किया गया, नहीं थे ना भाई। इंतकाम कैसा, इंतकाम तो उनसे होता है जिन्होंने मारा हो, मारने वाला भी गया। उस जमाने के जो लोग जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, मजलूम मरते रहे, कटते रहे, कत्ल होते रहे, खामोश रहा मुआशरा, तो वो तो चले गए ना। ये कैसा इंतकाम का, नहीं, जो जो राजी रहा, जब तक राजी रहा, इंतकाम पूरा कब होगा, वो बादशाह ना सही, उसके मिजाज के लोग सही। अब सुनो, खाके शिफा हर असर आशूर सुर्ख होकर बताती है, खून हुसैन जोश मार के बताता है, क्या भी मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ। लब्बैक है मुंतकिम, है ना। अब समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा हूं। इंतकाम लेगा किन लोगों से, वो तो मर गए, जहन्नम रसीद हो गए, नहीं यजीद ना सही, यजीदियत तो है, यजीद ना सही, फिक्रे यजीदी तो है। और किस तरह निकल निकल कर फिक्रे यजीदी सामने आ रही है मुख्तलिफ ममालिक में, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मुंतकिम के आने का जमाना करीब आ गया। लब्बैक नहीं दिया जनाब यहया का, तो क्या हक हार गया। किसी ने साथ नहीं दिया जनाब जकरिया का, तो क्या हक हार गया। यह मफहूम पहुंचाना चाह रहा हूं, जा अल हक व ज़हक अल बातिल। हर दौर में जब तक आवाज गूंज रही है हक की, हक कभी मगलूब नहीं होता। बस आखिरी मसला भी हल करता चला जाऊं आपका, जो असल में रखा है। क्या उसूल दिया मासूम ने, छठे इमाम ने, कि अल्लाह अपना इंतकाम लेता है पाक तरीन बंदों के जरिए, और अपने अंबिया का, औसिया का इंतकाम लेता है उन पर जुल्म ढाने वालों पर, उनसे भी बदतर जालिम को मुसलत करके। बनी उमैया पे बनी अब्बास को मुसलत किया, ऐसा हुआ कि कितनी बार तारीख में आप देखें कि जालिम जालिम से टकरा गया, हालात एकदम ही बदल गए। बदलते हैं कि नहीं बदलते, ऐसे ही है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने नेक बंदों का इंतकाम लेगा जालिम को मुसलत करके। ये जो हुसैन का इंतकाम लेने के लिए आ रहा है, शुहदाए करबला का इंतकाम लेने के लिए आ रहा है, ये तो ताहिर व मुताहर है, ये तो ज़ादे रसूल है, ये तो नस्ल पाक रसूल है। सवाल पैदा हो गया ना, बस काफ़ी है ना, इतना सवाल पैदा हो गया, बस की तशरीह में नहीं जाते, समझ गए सवाल को। कब कोई एतराज़ करते, कभी खून हुसैन का जो इंतकाम लेने आ रहा है वो तो ताहिर व मुताहिर है, वो तो फातिमा जाया है, वो तो रसूल ज़ादा है, वो तो हुसैन का बेटा है। अब इसका जवाब क्या लाएंगे, तो सुनिए, इसीलिए तो मैंने ज़ियारत वारिसा का वो जुमला करार दिया, सरनामे कलाम आज की शह सुर्खी उसी को तो बनाया, अस्सलाम अलैका या सार अल्लाह है वबना सारे, ये हुसैन के इंतकाम को अल्लाह ने अपना इंतकाम करार दिया है, ये हुसैन का इंतकाम नहीं, इसको अल्लाह ने अपना इंतकाम बनाया, इसलिए ज़ियारत वारिसा में कहा गया ए खून खुदा और खून खुदा के बेटे तुझ पर सलाम, यानी हुसैन का इंतकाम हुसैन का नहीं, अल्लाह ने अपना इंतकाम करार दिया है। यह है सार अल्लाह का मतलब, जो लोगों की समझ में नहीं आता था, सवाल भी किया था हमसे कि इसका क्या मतलब है खून खुदा, और अब एक आखिरी एतराज़ अगर कोई कर बैठे, फ़र्ज़ कर लें अमल तो करेगा नहीं, कोई बेवकूफ़ होगा जो करेगा कि साहब माज़ अल्लाह अल्लाह का खून, अल्लाह के खून का बेटा, अच्छा तो अल्लाह का हाथ होता है यदुल्लाह, कुरान में है कि नहीं है, अल्लाह का हाथ होता है नहीं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस से अल्लाह काम लेना चाहता है उससे अपनी तरफ पलटाता है, उसके अफ़आल को अपनी तरफ, वमा रमे था, पहले भी अर्ज़ किया था कभी, वमा रमे था इस रमे था वाला किन अल्लाह रमा ए हबी, ये कंकरियाँ जो मारी हैं आपने थोड़ी मारी, अल्लाह ने मारी, क्यों, मारने वाला तो रसूल का हाथ है, रसूल ने मारी है, ये मिसाल काफ़ी है, वरना और दे देंगे अगर किसी की समझ में नहीं आई बात, और मिसालें ले आएंगे और फिर मसला खड़ा हो जाएगा, फिर बात पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर बात हल मिन मजीद तक पहुँच जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, मुताला कम कर दिया आप लोगों ने लगता है, बहुत कम कर दिया, अगर मुताला होता तो इसका आप जायके को महसूस करते इस जुमले के, बात कहाँ तक पहुँच जाएगी, हल मिन मजीद, जहन्नम पुकारेगी और भी है तो ला, और भी है तो ला, तो क्या क्या जवाब दिए हैं मुफस्सरीन ने, सब पेश कर देंगे हम, कैसे भरेगा जहन्नम का पेट, जिनको मालूम है जिनको नहीं मालूम उनको बता देना, यहां से नहीं बताऊंगा, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, मैं तो वो रिवायत भी नकल नहीं करता जो हमारे यहां है ही नहीं इस तरह की, कि जहन्नम का पेट कैसे भरेगा, पेट भी नहीं, तो बात खत्म हो गई ना, बस पता चल गया सार अल्लाह का क्या मतलब है, करार दिया है अपना, लिहाजा हुसैन का इंतकाम अल्लाह का इंतकाम, मेरा इंतकाम, लिहाजा पाक तरीन फर्द को ज़ादे रसूल का इंतखाब किया है, कोई नहीं था जनाब याहिया की मदद करने वाला, कोई नहीं था जनाब ज़करिया की मदद करने वाला, मगर हक गालिब रहा, नकल सही करो। मैंने तो आज वाकयात भी वो पेश किए कि जो तमाम मकातिब फ़िक्र में मुसल्लमा हैं, यानी इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब जगह यही है, जनाब यहया हो, जनाब ज़करिया हो, जनाब इब्राहिम हो, जनाब मूसा हो, हक 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 कभी मगलूब नहीं होता, चाहे सर कट जाए। उस वक्त भी नामालूम कितने नमरूद के दरबार में जमा थे उसके उलमा, नमरूद के, जिनको नमरूद कहता था, ये बड़े बड़े हैं भाई, इतने सारे, इब्राहिम तो अकेला है, मेरे पास कितने सारे उलमा बैठे, वो सब नमरूद के फेवर में फतवे दिया करते थे, मूसा के फेवर में फतवे दिया करते थे। बस कत्ले हुसैन का फतवा जब आ सकता है तो मेरी आपकी क्या हैसियत है भाई, मेरी आपकी कोई हैसियत है, ज़रा सोचिए तो सही कि हुसैन के कत्ल का फतवा देने के लिए लोगों ने कितनी कीमत वसूल की हो और कितने दिन वो कीमत चली। मगर मुझे उन 700 या 400 मुफ्तियों को थोड़ी देखना जो दिरहम और दीनार की थैलियाँ लेते हैं, या सिर्फ ये भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि करीब आ जाए, करीब आ जाए, हाकिम के करीब हो जाए, कुर्बत हासिल करने के लिए, हमें अच्छी नज़र से देखे, यह हमारी तारीफ करे, यह हमारे सीने पे अपनी हिमायत का तमगा सजा दे, यह हम इसके हामी हैं, वो खुश हो जाएगा, हम उसके हामी हैं, हमारी जान बच जाएगी, हमारा माल बच जाएगा और हमें मनसब भी मिलने की उम्मीद है, शायद कुछ बना भी दिया जाऊं। ये भी तो एक लालच होती ना, रे की सल्तनत कल नहीं है, आज भी रे की सल्तनतें लोगों की नजरों के सामने हैं। पता नहीं सेनेटर बना दिया जाऊं, पता नहीं एमएनए बना दिया जाऊं, पता नहीं एमपीए बना दिया जाऊं, तो वो रे की सल्तनत नहीं, ये तो जहूर के जमाने तक आखिरी मारके तक ये ओहदों के लालच लोगों के दीन के फरोख्त करने का सबब बनते रहे हैं, बनते रहेंगे। मुझे ये सब नहीं देखना और ना दिखाना है आपको, मैं तो जो देख रहा हूँ वही दिखाऊंगा। वो सैकड़ों मुफ्तियों को मुझे नहीं देखना, मुझे तो उस मुफ्ती को देखना है जिसे हुसैन फकीह कह देगा, जिसे हुसैन फकीह कहेगा वो फकीह है मेरा। बाकी कोई कुछ फतवा देता रहे कि इसके हक में आधे, इसके हक में आधे, उसके हक में रोजाना बेच रहे होते हैं दीन अपने अपने मफादात की खातिर। क्या अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, अब तो वक्त भी आ गया, तकरीबन मजलिस का वक्त ख़त्म होने के लिए आ रहा है। बस मुझे तो ये देखना है कि हुसैन ने किसे फकीह कहा और फकीह की पहचान क्या है। ख़त पहुँचा है हुसैन का कूफे में, ये वो हुसैन हैं जो मक्के से चले हैं तो कहते हुए आ रहे हैं हवराइयों से, जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ। लेकिन यही हुसैन करबला से ख़त लिखते हैं हबीब इब्न मज़ाहिर को, और यूं ही नहीं अलकाबात के साथ लिखा। और जिसे हुसैन कोई लक़ब दे दे तो फ़कीह कूफा, जिसे हुसैन फ़कीह कह दे उसकी फ़काहत का आलम क्या होगा। फ़कीह कूफा, बचपन के दोस्त, अपने भाई हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। हबीब, मैं दुश्मनों के नरगे में आ गया, जितनी जल्द हो सके मेरी नुसरत के लिए पहुंच जाओ, मेरी मदद के लिए पहुंच जाओ, ताखीर न करो। जब ये ख़त मिला है, बाजार में थे जनाबे हबीब, जब कासिद ख़त लेकर पहुंचा, एक तारीख गोशे में ले गए थे, ख़त को पढ़ा, पेशानी पे बल नमूदार हो गए, शिकने नमूदार हो गए पेशानी। ख़त को अबा की जेब में रखा, साथ लेकर आए, मेहमान खाने में बिठाया, जौजा दस्तरखान लगाए बैठी है, यार अभी बहुत देर कर दिया आपने, और मेरे मौला का कासिद आया था, खैर तो है, और तेरे चेहरे पे परेशानी कैसी है, ये तफक्कुरात कैसे, आज नारे हैदरी, इत्मीनान इत्मीनान इत्मीनान, बैठे इत्मीनान, नारे तकबीर, बैठ जाए, मैं बैठा हुआ हूं मिंबर पे, बैठ जाओ, मैं लगा रहा हूं नारे, बैठ जाओ, मैं नारा लगा रहा हूं, बैठ जाओ, मैं यहां बैठा हूं, सब बैठ जाओ, मैं बैठा हूं मिंबर पे, मैं नारा लगाऊंगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, का जिक्र सुनो, कुछ नहीं है आजादारी, मैंने कहा कोई डिस्टर्ब नहीं हो सकती, मैं बैठा हूं, साथ मरेंगे, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा, अलग लब्बैक या हुसैन,
मेरे भाई हबीब को मेरा सलाम कह दो।